आचार्य भगवान का समय सार जो है, उस समय सार के ऊपर जो गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं, उसके प्रवचन रत्ना करके 44 पृष्ठ पर हम आए हैं। देखो ये निचला पैराग्राफ है, उसके भी 3-4 लाइन हो गई है। अब जो नीचे से चौथी लाइन है, यानी स्व समय किसको कहना, ये बात को हमने कल देखा था। अभी यहाँ पर समय की बात चल रही है। देखो, अनादि अविद्या रूपी जे केड़, तेना मूर्णी गाठ जे वो जे मोह, तेना उदय अनुसार प्रवृत्ति ना आधीन पना थी, दर्शन ज्ञान स्वभाव मा नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व थी छुटी, परद्रव्य ना निमित्त थी उत्पन्न, मोह राग द्वेषादि भावो साथे एकत्व गतपने, एटले एकपणु मानी ने वर्ते छे, त्यारे उद्गल कर्मना प्रदेशों मा स्थित हुआ थी, युगपद परने एकत्व पूर्वक जानतो तथा पर रूपे एकत्व पूर्वक परिणमतो, एवो ते पर समय एम प्रतीत रूप करवामा आवे छे। यानी वो स्वयं को पर स्वरूप ही मान रहा है। ऐसा जो जीव है, जो अपने स्व स्वभाव के तरफ न देखते हुए मोह राग द्वेष के कारण से पर पदार्थों में ही एकत्वपने वर्त रहा है, ऐसे जीव को यहाँ पर समय कहा है। अब बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो जो अपने आत्मा के अनुभव करता है उसको स्व समय कहा है, जो मिथ्यात्वी है उसको पर समय कहा है। निश्चित यानी दर्शन ज्ञान स्वभाव मा नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व, यानी ये जीव का स्वभाव कैसा है तो कहते हैं अपने स्वभाव। देखो यहाँ एक बात पहले से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ हमेशा समय सार में सम्यक रूप से परिणमित पर्याय सहित वाले आत्मे को भी बात की है। पहले दृष्टि का विषय तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की बात की, लेकिन यहाँ जब जब बात करेंगे तब स्वभाव रूप परिणमित पर्याय सहित वाले आत्मा की भी बात बताएंगे। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि वास्तविक इस जीव का स्वभाव क्या है। तो कहते हैं स्वभाव तो ऐसा है कि अपने स्वरूप में, तो कैसा स्वरूप है, तो दर्शन ज्ञान स्वभाव में निश्चित रूप से वृत्ति रूप, यानी उसमें परिणति करना, निवृत्ति यानी उसे हट जाना, आत्म तत्व की छुटी यानी उसमें हमेशा रममान होना चाहिए था, उससे छूटकर क्या कर रहे हैं, परद्रव्य ना निमित्त थी उत्पन्न तत्व, यानी वहां से छूटे, परद्रव्य में अटके तो क्या हुआ कि उससे मोह राग द्वेषादि भावो जो उत्पन्न होते उसके साथ एकत्व बने से जो वर्त रहे हैं। कब कहते हैं पुद्गल कर्म वगैरह, तो अभी तो आप बात समझ गए। नियत यानी हमेशा निश्चित रूप से आ रही थे। ये अभी पृष्ठ क्रमांक आए 45 पर अभी ऐसा है, वहां तो परिणति जो चल रही है उसको स्व समय कहा गया है। अभी समझो किसी ने आत्मानुभूति की है, सम्यक दृष्टि है, तो उसकी शुद्ध परिणति भी चालू है ना। ऐसा नहीं कि उपयोग स्वरूप हमेशा कायम रहे, वो नहीं ना, शुद्ध परिणति भी चालू है ना उसकी। तू आगे, सम्यक दृष्टि जो है उसको आत्मानुभूति तो हो गई, आत्मानुभूति हुई, अभी वो समझ लीजिए कि एक अंतर मुहूर्त अपने स्वरूप में शुद्धोपयोग रूप से अटक रहा, वहां रहा, एकाग्र हुआ। बाद में तो ऐसा है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसकी तो कायम स्वरूप में एकता नहीं रहेगी, जैसे केवली भगवान की होती है उपयोग रूप से, उपयोग रूप नहीं लगा रहेगा, लेकिन शुद्ध परिणति तो चालू रहेगी ना। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा, जब तक आत्मा का अनुभव चल रहा है वो सम्यक्त भी है, और जब शुभ और अशुभ राग में आएगा तो मिथ्यात्वी हो जावे, ऐसा नहीं। ऊपर से चौथी लाइन,
देखो मैं शॉर्ट में ये सब पूरा एक टीका की बात करता हूँ। यहाँ पहले में पहले समय की बात, समय किसको कहा, जीव द्रव्य को कहा, और बाद में उस जीव द्रव्य के स्व समय पर समय ये दो भी, या वो द्रव्य को पर्यायात्मक वाला द्रव्य लिया है। समय सार की बात नहीं है, समय की बात है अभी। समय सार में तो शुद्धात्मा को लिया, दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, वो समय सार है, समय का भी सार है, और अकेला समय क्या है, तो जीव द्रव्य को समय का। तो समय का अर्थ कैसे किया, जो जानता भी है और परिणमता भी, जानते हुए परिणमता है, उसको यहाँ समय कहा। वो वही केवोच है, यहाँ सात विशेषण उन्होंने दिए। पहले भी पहले कहा था उत्पाद वेद हुआ सही है, सप्ताह सिद्ध की है ना, उसने जो सभी बहुत सारी बातें की। फिर कहा वो चैतन्य स्वरूप वाला है, फिर कहा अनंत धर्मों में एक धर्मी गुण है, फिर कहा वो क्रम रूप गुण पर्याय वाला है, उसके बाद कहा कि स्वर्ग और पर को जानने वाला स्वभाव वाला है, फिर कहा कि अन्य द्रव्यों से इसके गुण भिन्न है, अन्य जो भूगल धर्म धर्म आकाश का आदि द्रव्य है उनसे यह जीव भिन्न है, भिन्न स्वभाव वाला है। और फिर भी कहा चौथी बात की कि अनंत द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी वो संकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव वाला, ये जीव कैसा है उसकी बात की, जीव द्रव्य उसको ही समय कहा। अब इस जीव द्रव्य के स्व समय और पर समय भी दो भेद बताए है ना, कभी समय यानी जीव द्रव्य, उसमें स्व समय और पर समय कौन है, तो स्व समय में
चौथी लाइन पढ़ो।
चौथी लाइन, युगपत स्व ने एकत्व पूर्वक जान तो और स्वरूप एकत्व पूर्वक परिणाम, क्योंकि समय की हमने डेफिनेशन की जानने वाला और परिणमने वाला। अब स्व को जानने वाला खाली जानने वाला नहीं, एकत्व पूर्वक स्व में मैं अपना अहम बुद्धि स्व को एकत्व पूर्वक जानता है और वैसा ही परिणमन भी करता है।
अभी यहाँ स्व का एकत्व यानी स्व जैसा है, ऊपर जो सात प्रकार से बताया उसमें एकत्व पने जो वर्त रहा है और ऐसा ही प्रतीति कर रहा है, जान भी रहा है और इसमें ही वर्त रहा है, उसको स्व समय कहा। अब यहाँ जो लिख रहे हैं बार बार के स्वन एकत्व पूर्वक, स्वन एकत्व पूर्वक यानी जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसको मानना, जानना और उस रूप परिणत होना, दोनों युगपद है ना।
यहाँ राग द्वेष है नहीं ऐसा नहीं, परंतु राग द्वेष से भिन्न रूप से उसमें एकत्व नहीं है, वह समय वाले को यानी समय दृष्टि को, राग द्वेष के परिणाम है शरीर है समय का उदय, उसमें उसको एकत्व नहीं है, मुख्य बात स्व में एकत्व है, राग द्वेष और पर पदार्थ सब में उसको भिन्न है, याद है ना। अब पर समय वही किसको लिया, देखो नीचे से दूसरी लाइन, मोह राग द्वेष आदि भाव साधे एकत्व उत्पन्न है परिणमे, पर समय वाला पर पदार्थों में तो उसको अपनापन है ही, एकत्व भी है उसको, शरीर कुटुंब सब सब उसमें ले जाए, पर पदार्थों में तो एकत्व है ही है, अपने में उठने वाले जो राग द्वेष आदि भाव है उसमें भी उसको एकत्व, तो उसके साथ एकत्व अपने जो परिणमता है ज्ञान में तो आ रहे, जैसे अपने में उठ रहे कषाय अपने ज्ञान में आते उसमें जो एकत्व करता है वो पर समय के पास है। समय को ही हमने कहा जानना और परिणमना दो बातें, स्व समय में स्व को जानना और स्वरूप उसे में एकत्व पने जानना और एकत्व पने परिणाम, और पर समय में
पर पदार्थ में
तो जानते हुए उसमें जो मोहराग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसमें एकत्व करना है उसको,
पर के साथ भी एकत्व बुद्धि
है, पर के साथ तो एकत्व है ही है, और पर के निमित्त से उठने वाले मोहराग द्वेष आदि परिणामों में भी
एकत्व बुद्धि है। देखो यहाँ लास्ट लाइन है ना, युगपद लास्ट लाइन के आखिर में युगपद पर ने एकत्व पूर्वक जानतो तथा पर रूपे एकत्व पूर्वक परिणमतो। अभी यहाँ पर में तो मोह राग द्वेष को भी लेना, वो जीव का स्वभाव नहीं है ना, ख्याल में ते पर समय छे एम प्रतीत करवामां आवे छे, प्रतीत करवामां आवे छे यानी क्या, वैसी श्रद्धा से वह परिणमता है, पर स्वरूप ही मैं हूँ, पर ही मेरा है, ये मैं हूँ उसमें एकत्व करो, या मेरा है ऐसा ममत्व करो, या मैं उसका करता हूँ ऐसा कर्तृत्व बुद्धि रखो, या मैं उसको भोगता हूँ वो भोक्तृत्व बुद्धि है, ये चारों ही एक हो गए तो अन्य होंगे ही होंगे, ऐसा किसी को एकत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, चारों यूनानिमसली साथ में रहेंगे, और जब सम्यक तो हो जाएगा तो ये पर के साथ की जो कर्तृत्व बुद्धि है, पर के साथ की जो एकत्व बुद्धि है वो हट जाएगी। देखो घर में चार भाई होते हैं, तो जब बंटवारा होता है तो ये मेरा पैसा ये मेरा पैसा, तो पैसे में एकत्व बुद्धि, ये तेरा पैसा तेरा खर्चे तुझे खर्चा करना है, मेरे को नहीं तुझे खर्चा करना है, मेरा पैसा ही है, तो वो उसमें एकत्व बुद्धि भी है और उसमें स्वामित्व कहो या ममत्व बुद्धि दोनों है, और उस पैसे को मैं चाहे जहां खर्च कर सकता हूं, चाहे जैसा मैं उसका उपभोग कर सकता हूं भोग कर सकता हूं, ये सारी मान्यता एक साथ है। अब ऐसे हर एक में लगाना, पर पदार्थ ये शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये शरीर को भोगता मैं हूँ, ये शरीर मेरा है और शरीर के बिना तो मेरा एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, ऐसे सभी में लगा लेना, जो पर पदार्थ है इसमें ऐसे ही जीव के परिणाम चल रहे, तो ऐसे जीव को कह रहे हैं कि वो पर समय है, प्रतीति भी खोटी है परिणमन भी खोटा है, सब एक साथ आएगा। तो अभी क्या कहते हैं आरिते, या अभी 45 पेज पर पहली लाइन, आ रीते जीव नामना पदार्थ ने स्व समय ने पर समय एवं द्विविधपणु प्रकट थाय छे, यानी ये जीव के ही दो कॉम्बिनेशन, यहाँ के लिए क्या लिखा, जीव नामना पदार्थ ने, पदार्थ यानी जो पदार्थ का अर्थ कोई ऐसी एक वस्तु है उसको पदार्थ कहते वो बात नहीं, पदार्थ का अर्थ यहाँ शास्त्र में हमेशा द्रव्य लेना, क्या कहते हैं कि जीव नामना पदार्थ ने स्व समय ने पर समय वो द्विविधपणु प्रकट थाय छे। अभी ये बात है कि जब यह जीव जब तक अपने स्वभाव को नहीं समझता है, अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करता है, तब तक उसके पर समय पना चालू है। और एक दफे स्व समय पना प्राप्त हुआ, अब मान लेते कि उसको मिथ्यात्व आया नहीं, सम्यक तो टूटा ही नहीं, तो उसके स्व समय चालू रहे। अब यहां करणानियों का विषय मत लेना कि इतनी बार नीचे गिरा इतनी बार ऊपर उठा, क्या वो तो जब हम समझेंगे। यहां तो ऐसी बात कहेंगे गुरुदेव, तो ऐसी बात पढ़वानी, बात तो नहीं करवानी, बस ऐसी बात ही मत सोचना। अप्रतिहतपने ऊपर चढ़ से एम के अप्रतिहतपने एटले कि बीच में कोई खंड आए बिना एक दफे सम्यक तो हुआ तो मोक्ष थे छुटको। ये उनके कुछ कुछ ऐसे शब्द थे, वो बराबर मजा आता है याद करने को। भावार्थ, जीव नामनी वस्तु ने, वस्तु यानी द्रव्य ने पदार्थ कहेल छे, जीव एवो अक्षरों नो समूह ते पद छे, अने ते पद थी जे द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूप पणु निश्चित करवामा आवे ते पदार्थ छे। अभी क्या समझा रहे, देखो पहले तो ये समझाए कि यहाँ जो पदार्थ कहा है उसको ही वस्तु, जीव द्रव्य को यहाँ पदार्थ कहो वस्तु कहो ऐसा कहने में आ रहा है। अभी ये जीव नाम का जो अक्षरों का समूह है उसको यहाँ पद कहा। अब कहते हैं वो पद से क्या हमें निश्चित करने में आता है कि वो पद में वो कैसा है पद, कि जे द्रव्य पर्याय रूप, यानी ये जो द्रव्य है कहो या पद है कहो या वस्तु है कहो या पदार्थ है, वो कैसा है, द्रव्य और पर्याय स्वरूप है। और द्रव्य और पर्याय उसमें क्या कह रहे हैं, अनेकांत स्वरूपनु निश्चित करवामां आवे छे। ये द्रव्य पर्यायों में अनेकांत पना है यह भी निश्चित करने में आ रहा है। ते वो ते आवे ते पदार्थ छे, ए जीव पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप छे। यानी ये कैसा है जीव पदार्थ के जिसमें उत्पाद वे और ध्रुवता इन तीनों की सत यानी सत्ता है। क्या कहा, देखो अगर आपको जरा सा हम पीछे जाएंगे, पीछे नहीं इनके आगे के उमा स्वामी का मोक्ष शास्त्र को देखेंगे तत्वार सूत्र में, तो वहां द्रव्य का लक्षण क्या बताया था याद है तेजुबेन? हाँ, द्रव्य का लक्षण मैंने पूछा, सत द्रव्य लक्षणम। तो वो सत कैसा है, सत यानी जो सत्ता, सत्ता विद्यमानता है पना, ऐसा जो सत पना जो है वह द्रव्य का लक्षण है। कौन से द्रव्य की बात की है, हाँ जीव द्रव्य की, हाँ बोलो बेन। अरे किसी भी द्रव्य की, द्रव्य जय सच, तो द्रव्य क्या, और आप चाहे जितने भेद करो, जाति अपेक्षा छह करो या संख्या अपेक्षा अनंत करो, सारे द्रव्य जो है मतलब प्रत्येक द्रव्य सत स्वभावी है। सत यानी जिसकी हयाति कभी नहीं, ऐसा मतलब है ही नहीं, हमेशा जो विद्यमान है, हमेशा यानी त्रिकाल जो विद्यमान है सत्ता स्वरूप है, जिसकी अस्थि है वह द्रव्य है। तो वह द्रव्य कैसा है, तो कहते कैसा ये सत है तुम्हारा, तो कहते उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत है, यानी तीनों सत है। क्या कह रहे हैं, उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है और ध्रुवता भी सत है, ऐसे तीनों सत मिलके ये द्रव्य बनाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अनेकांत बात है ना, क्या कहा देखो, ए थर्ड लाइन, ए जीव पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप छे, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप छे, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य छे, द्रव्य होवाती वस्तु छे, गुण पर्याय वाळो छे, तेनु स्व पर प्रकाशन प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक छे। क्या कह रहे हैं, देखो ये पहले इसका स्वभाव, ये सारे स्वभाव बताए हो कि वो गुण पर्याय वाला है, चेतना स्वरूप है, वो चेतना स्वरूप भी कैसा है, दर्शन ज्ञान मय ऐसा चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप है, यानी उसमें अनंत धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, सब उसका वह एक जिसको हम कहते हैं ना भंडार भरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं, द्रव्य हुआ थी वस्तु च, वस्तु यानी जिसमें द्रव्य, जिसमें गुण और पर्याय वसते हैं, रहते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। तो क्या कहा, द्रव्य हुआ थी वस्तु छे, गुण पर्याय वालो छे। अभी उमा स्वामी ने भी बताया ना, गुण पर्याय वत द्रव्यम, तो वो बात बता रहे हैं। अभी वास्तव में तो ऐसी बात है, ये तो भावार्थ में बात बताई जा रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये भावार्थ उन्होंने नहीं लिखा है,
जो सात बातें मूल टीका में आई है वही सात बातें यहाँ फिर भावार्थ में, क्योंकि उसी का भावार्थ है ना। टीका में जो एक एक परमत का खंडन करते हुए वही से केवो छे, वही से केवो छे सात बार आया था, वही सात बातें यहाँ फिर से हमारे लिए फिर दोबारा बता रहे। टीका जो है वो अमृत चंद्राचार्य की मूल संस्कृत में थी, उसका यहाँ हमें ट्रांसलेशन किया गुजराती। भावार्थ है मूल हिंदी में लिखा है, जैसे जी छाबड़ा नाम के पंडित हुए थे उन्होंने लिखा है, उसका भी यहाँ ट्रांसलेशन गुजराती है। तो अभी यहाँ ये क्रम से सात बातें जो हमने ऑलरेडी टीका में पढ़ी थी, ये कल आई थी ना, बस वो सत्ता वाला उत्पाद है, जो सत्ता वाला था और जो सत्ता को नहीं मानते उसका खंडन किया था वगैरह वगैरह, हमने कल देखा था। अब क्रम से देखना, ये उत्पाद वे ध्रुव में सत्ता स्वरूप से पहली बात, दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप से दूसरा पॉइंट, तीसरा अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य, चौथा द्रव्य हुआ की वस्तु से गुण पर्याय वालो, पांचवा अभी आगे जो पांच बार चक्कर साहब का क्रम से सुनाए।
बताओ बताओ सातों पॉइंट।
देखो पांचवा है तेन स्वपर प्रकाश ज्ञान, अनेकाकार रूप एक छे, यानी अनेक नियम को जानते हुए भी वो एक है। वही से छठा पॉइंट है, वही से जिन पदार्थ आकाश आदि की भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप से, कल उसके बाद आई थी अवधान है सुख गति सुख के सुखो मेरे आकाश धर्म धर्म आकाश के गुण है, द्रव्य का गुण भिन्न है, इसकी अन्य द्रव्य
हो गया। देखो अभी आपके प्रश्न का उत्तर मैं भी देना चाहता हूँ। पहले तो 2000 लगभग हो 2000 वर्ष पहले कुंदकुंदा आचार्य ने ये समयसार शास्त्र लिखा, उसके बाद तकरीबन 1000 के बाद आचार्य अमृत चंद्र हुए। उस जमाने में तो ये प्राकृत में लिखा गया था ग्रंथ है, वो 1000 बाद साल के बाद लोगों को प्राकृत नहीं समझ में आ रहे, तो उन्होंने उसमें संस्कृत में उनकी टीका करी। अब बहुत साल गुजर गए, फिर उसके बाद लोगों को संस्कृत भी नहीं आने लगी, तो फिर क्या हुआ, ये जयचंद जी छाबड़ा थे तो वो तो संस्कृत में पारगामी थे, तो वो लोगों को समझे इसलिए उन्होंने उसकी भावार्थ लिखा उनका, कि भाई अमृत चंद्राचार्य क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने वो भावार्थ में लिखा। अब कुछ दिन के बाद लोगों को हिंदी भी पढ़ने में तकलीफ होने लगी, तो स्वामी जी का उदय हुआ, उन्होंने ये अमृत चंद्र को, जयचंद जी छाबड़ा को और ऑफकोर्स राजमल जी पांडे को भी उनके भी उद्धृत किया था उन्होंने, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कुंदकुंदा आचार्य को अपनी सरल भाषा में, अपने स्वानुभूति पूर्वक ऐसी अपनी भाषा में, ओजस्वी भाषा में यहाँ पर गुजराती में उसकी बात कही। अब कुछ दिन के बाद 18 बार 19 बार, अभी कुछ दिन के बाद ये गुजराती भी नहीं समझेंगे तो इंग्लिश वाले कोई आएंगे ना? तो उनको इंग्लिश में लिख के देना पड़ेगा। अब वो तो ऐसा है ना कि समय समय से भाषा बदल जाती है ना? और लोगों को नहीं पता। अभी तो आप जानते नहीं इसकी तो कितनी मतलब अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, मतलब गुरुदेव के प्रवचनों का हिंदी में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, ये स्वामी जी के प्रवचनों के। ये क्या हो रहा है कि ये प्रचार प्रसार हो रहा है क्या, उसको एक जगह बांध के रख रहे हैं, क्या करें? अभी जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा भाई साहब, तो लोगों के ज्ञान में भी उतनी उतनी कमी आएगी, तो ऐसा अधिक और एक्सप्लेनेटरी बातें आती जाएगी, क्योंकि हमने तो बिल्कुल शास्त्र में पढ़ा हुआ है और हम जानते भी हैं कि ये जैन दर्शन का इस भरत क्षेत्र में पांचवे काल के अंत तक उसकी हयाती रहने वाली, तो कैसे रहेगी? अभी पहले तो कुछ नहीं था, तो टाइम में टेप करके रखे, और टेप सुनने को लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो टेप पर से पुस्तकें निकली। अभी उसके ऊपर जो कोई ट्रांसलेशन हो रहा है टेप में आया, तो वो टेप भी अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, तो अभी उसकी सीडी निकली। अब सीडी ओल्ड फैशन हो गई, डीवीडी निकला, हाँ? अब क्या नहीं, क्या क्या होने वाला है मालूम नहीं अभी तो, हाँ? तो ये तो भाई चलेगा, क्योंकि हमको तो और 18,500 तक तो इसको जिंदा देखना है, हाँ? आप कहेंगे क्या आप 18,500 साल रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे हम जहां जाएंगे अवधि ज्ञान के साथ रहेंगे, नरक में भी जाएंगे तो अवधि ज्ञान के साथ रहेंगे, घबराते क्यों? कौन सा? हाँ, ये पद के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ है। हाँ, वहां तो पदार्थ बता दिया, उस पदार्थ का अर्थ लोगों को नहीं समझ रहा इसलिए पद को बताया। तो हम कहां आए थे, चलो जहां तक आपने पहुंचा दिया, फिर से चलता हूं मैं पीछे से। जे थर्ड लाइन, थर्ड लाइन भावार्थ की थर्ड लाइन, जे जीव पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप छे, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप छे, अनंत धर्म स्वरूप छे। यानी यहाँ उसमें अनेक धर्म है, अनंत धर्म है, और द्रव्य हुआ थी वस्तु छे, यहाँ तक तो हम आए थे। गुण पर्याय वाड़ो छे, तेनु स्व पर प्रकाश ज्ञान अनेकाकार रूप एक छे। यानी क्या कहना चाहते हैं, पहले में पहले तो ज्ञान कैसा है, तो स्व को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं कि मैं अभी स्व को भी जान रहा हूं और पर को भी जान रहा हूं, तो फिर आप क्यों कहते हैं आत्मा का अनुभव करो? आप तो कह रहे हैं मैं जान रहा हूं, क्यों? ऐसा प्रश्न किसी के मन में उठेगा? पर मैं ऐसा पूछ रहा हूं आपको, आत्मा का स्वभाव क्या है जानती आप? आत्मा का स्वभाव बोलो। हाँ, यानी ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूप, तो ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम हम पढ़ते ना, अब आगे पूछते हैं तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्व पर प्रकाशक, तो स्वभाव जो होगा वह कभी निकल जावे ऐसा तो नहीं, हमने देख लिया कल ही, तो हमेशा ज्ञान स्व को भी जानेगा। कब? एक ही समय में, ऐसा नहीं कि अभी मैं स्व को जानूंगा, थोड़ी देर के बाद आपको जानूंगा, पर को जानूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि भाई ये तो ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, तो हर समय मुझे मेरा ज्ञान हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो फिर प्रश्न वही रहा ना कि फिर आप हमको आत्मानुभव करने को यानी अपने को जानने के क्यों यहां पीछे लगे हैं, सलाह देते हो? चलो क्यों सलाह देते हो, तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं भाई। बात तो ऐसी है कि इस जीव ने मैं जुदा हूँ और पर पदार्थ जुदा है ऐसा स्व पर भेद विज्ञान किया ही नहीं है, मैं ही पर रूप हूँ ऐसा माना है। ख्याल में वो मानने में तो मैंने ऐसा माना है, तो मैंने मेरी बात आ गई ना, तो पहले स्व को जाना बाद में ये बात जानी है, ऐसा कहा मैंने ये जाना है। ख्याल में कभी भी क्यों आपको समझ में आया क्या नहीं, बोलते तो मैं नहीं समझी, ये कहते हाँ मैं समझी, तो पहले मैं स्व को हम रिफर कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या तकलीफ है, तकलीफ तो ये है कि हमने पर रूप ही स्वयं को माना है, इसलिए स्व नाम की कोई एंटिटी है इस बात का इसको एहसास ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई तू स्व को जान। लेकिन आत्मा का स्वभाव ही स्व पर को प्रकाशक यानी जानने का है। तो यह क्या बता रहे, देखो कि तेनु चौथी लाइन ऊपर से स्व पर प्रकाशक ज्ञान जान रहे, उसके बाद पेंसिल को जान रहे, तो हमारा ज्ञान हर हमेशा अलग अलग आकार रूप हो रहा है, गेयाकार हो रहा है, तो ऐसे अनेकाकार रूप होते हुए भी वो कैसा है, एक है, तो कैसा एक है, ज्ञान आकार है, यानी ज्ञान अपना ज्ञान का आकार कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन वह ज्ञान जो है वो किसको जान रहा है ये जब हमको देखना नक्की करना पड़ता है, तो हमें गेय का आधार लेना पड़ता है कि हमने लाल रंग को जाना, हमने मीठे स्वाद को जाना, हमने नीले रंग को जाना, जो भी हम कहेंगे तो हमें गेय पदार्थ का आश्रय लेना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ज्ञान गेयाकार हुआ, लेकिन ज्ञान आज तक कभी भी गेयाकार हुआ ही नहीं, ज्ञान हमेशा ज्ञानाकार ही है, तो अनेकाकार रूप होते हुए भी एक रूप है। यहां जो बता रहे हैं ना, क्या कहा, तेनु स्व पर प्रकाशन ज्ञान अनेकाकार रूप एक छे, तो हमेशा अपने को ऐसा लगता है कॉन्ट्रेडिक्टरी क्यों बोल रहे हैं, कि पहले तो बोलते अनेक फिर कहते एक, ऐसा क्या है, तो वो समझने के लिए। हाँ,
जैसे दर्पण में अनेक वस्तुओं का प्रतिबिंब है, अनेक वस्तुओं के प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण रूप से एक है, वैसा ज्ञान अनेक पर पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञान रूप से एक ही है, अनेक आकार होते हुए भी एक आकार, ये बात है।
वणी ते जीव पदार्थ आकाश आदि थी भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप छे, ये भी तो बात हमने कल देखी थी कि ये चैतन्य पना जो है यानी ज्ञाता दृष्टा पना है, ज्ञान दर्शन नाम की जो कोई शक्ति कहो या ज्ञान गुण कहो, ये अन्य कोई भी द्रव्य में नहीं, वो असाधारण यानी विशेष गुण है इसका। तो कह रहे हैं के असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप छे, आकाश आदि थी में, आकाश आदि थी में किसको लेना, किसको याद है, हाँ बोलो तेजो में, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य ये सब काल हमने देखे थे बात, तो हरेक के विशेष गुण भी देखे थे, उस रूप नहीं है, उनसे भी जुदा कैसा है, भिन्न बताया ना, आकाश आदि थी भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप छे, अने अन्य द्रव्यो साथे एक क्षेत्र मां रेवा छता पोताना स्वरूप ने छोड़तो नथी, ये भी हमने देखा था कि एक क्षेत्र में छे, यानी हमने ये भी कल बहुत अच्छी तरह से समझा था कि ये लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां छह द्रव्य नहीं रहते, यानी हर आकाश के प्रदेश में लोकाकाश हो, हर लोकाकाश के प्रदेश में छह द्रव्य रहते, ये बात भी कल हमने देखी थी, याद है ना, तो तुम्हारा सोने का बिस्कुट गिरा था वो, हाँ हाँ हाँ, वो अभी गई थी ना वो तुम्हारे गांव को उधर से लाई, चलो चलो चलो, हाँ तो क्या कहते हैं, अन्य द्रव्यों साथे एक क्षेत्र में रेवा छता पोताना स्वरूप ने छोड़तो नथी, आवो जीव नामनो पदार्थ समय छे, जारे ते पोताना स्वभाव में स्थित हो, यहां देखो इन शॉर्ट बहुत आसान तरीके से बताया कि जारे ते पोताना स्वभाव मां स्थित होय छे त्यारे तो स्व समय छे अने पर स्वभाव राग द्वेष मोह रूप थईने रहे त्यारे पर समय छे। ए प्रमाणे जीवने द्विविधपणू छे, एमां बेपणू छे। अभी ये सब समझकर हमको क्या करना है, ये काहे को इतने हमारे दिमाग को टेंशन लाते हैं ना। हमारी वासंती बहन बोलती इतना लंबा लंबा इतना शॉर्ट में बता देते ना, क्या के जा रहे थे एटले जीव पोताना स्वभाव में स्थित रहे त्यारे तो ते स्व समय छे, अने जारे पर स्वभाव में एटले शू राग द्वेष मोह रूपे थईने रहे त्यारे पर समय छे। अभी ऐसी इतनी बात क्यों बताई है कि यहां तो जीव के दो अवस्था भेद बताए हैं, जीव दो प्रकार का बताए तो उसके में अवस्था की अपेक्षा से बता रहे। तो हमको ये समझना है, नक्की करना है आज ही कि हमको स्व समय रूप से रहना है क्या पर समय रूप से रहना है, अपने को नक्की करने का है, अपना अपना नक्की करना और उस प्रकार से हमें अपना पुरुषार्थ करना है, अपने आगे की बात करना है। जैसे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में 10 बच्चे होंगे, 100 होते आजकल, तो वो हर एक जन नक्की करते हैं कि अपने को ये इस साल परीक्षा पास होना है, वो अभ्यास करेंगे और जिनको अरे चलो ठीक है तो पिक्चरें देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे, ख्याल में है ना। तो अपने को ऐसा नक्की करने का है कि हमें पर समय ही रहना है या स्व समय में से पर समय होना है। ख्याल में है। चलो प्रथम गाथा में समय नु प्रावृत केवानी प्रतिज्ञा करी। ये पहली गाथा में क्या बात हुई तो कहते हैं समय नु प्रावृत केवानी प्रतिज्ञा करी, एटले के समय नो सार केवानो प्रतिज्ञा करी। क्या ए आकांक्षा थाय के समय एटले शू, आकांक्षा ने मन में ऐसी इच्छा प्रश्न उठे कि आ समय एटले शू, तेती हवे पेला समय ने ज कहे छे दरेक पदार्थ नु स्वरूप ज समय छे। ये और आगे बात बता दे, ये जो पैराग्राफ चल रहे ना तो उसमें और एक्सप्लेनेशन दे रहे कि दरेक पदार्थ नु स्वरूप ज समय छे, अर्थात दरेक पदार्थ पोताना गुण पर्याय नो प्राप्त थईने परिणमन करे छे, तेथी तेने समय कहेवामां आवे छे। पहले हमने आपको बताया था शायद कि ये समय नाम का जो पद है यानी शब्द है उसके अनेक अर्थ है। तो पहले समय का अर्थ हमने द्रव्य को भी बताया था और समय का अर्थ जीव द्रव्य को भी बताया था, वहां हरेक की जगह उसकी डिफिनेशन अलग अलग हो जाए। तो यहां क्या कहते हैं, दरेक पदार्थ पोताना गुण पर्याय ने प्राप्त थई ने परिणमन करे जे तेथी तेने समय कहेवामां आवे छे। समय शब्द नो बीजो अर्थ एकी साथे जाणवू अने परिणमन करवू एवी बे क्रियाओ जेमा होय छे तेने समय कहे छे। तो आपके प्रश्न मन में ऐसा प्रश्न उठेगा, अरे एक समय में तो एक ही क्रिया होती है और आप दो दो क्रिया की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा होगा। तो मैं वासंती बहन से पूछूंगा आप में कितनी क्रिया एक समय में होती है, एक समय में एक। अच्छा मम्मी आप क्या कहती है, एक समय में आप में कितनी क्रिया होती है। अरे उपयोग निवाद नहीं क्रिया निवाद चाले छो, केम के अहिया शू थाय छे जो बे वातो थाय ने जो एक ही साथे जाणवू अने परिणमन करवू। अभी आप में ज्ञान गुण है कि नहीं और द्रवित्व नाम का भी गुण है तो दोनों का कार्य हो रहा है, श्रद्धा नाम का गुण है उसका भी कार्य हो रहा है, अरे ऐसे अनंत गुण है तो अनंत गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय रहेगी, इसका अर्थ क्या हो गया अनंत परिणमन हो रहा है। उसको कहने में भले अनंत समय लगे, एक समय में तो हम नहीं कह पाएंगे लेकिन हो तो रहा है निश्चित रूप से। तो क्या है हम कुछ कुछ सुनते ना कि तुम एक समय में सिर्फ देख सकते हो, दूसरे समय में सुन सकते हो, तीसरे एक एक समय यानी यहाँ एक अंतर मुहूर्त लेना। अभी हम एक एक समय की बात करेंगे, पांचों इंद्रियों का कार्य यानी उसका ज्ञान एक समय में कभी नहीं होगा। तो हमारी क्या नाम है हेतल कहती है तो आप धोखे में हो, हम तो जब भी घर में बैठते हैं तो टीवी देखते हैं। क्यों राजेश? तो टीवी देखते देखते हम तो क्या भजिया खाते हैं ना? क्या आप क्या खाते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, चलो, क्योंकि और रात का टाइम है ना, मुंह को पानी नहीं आए बोले खाना खाने दो। हम खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, और घर में वो एसी लगाते हैं, और वहाँ घर में वो क्या फुसफुस उड़ाते हैं ना, तो उसके सुगंध भी लेते हैं, और क्या रह गया अभी, और गाना भी सुनते हैं। तो पांच बातें एक साथ होती है, और आप कहते हैं ऐसा नहीं है, एक समय में इस जीव का उपयोग एक ही लगेगा एक ठिकाने पे। अब यहाँ तो द्रव्यान योग है ना, तो एक समय की बात करेंगे, और आप कर्णान योग में सुबह आएगी ना, तो एक अंतर मुहूर्त के लिए को जानेगा, जब उसको ज्ञान में आता है कि ये मैं जान रहा हूं करके। ये तो विनोद भाई थोड़ी पागल है रोज आने के लिए। ऐसा है ना, देखो हम स्वयं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर जो भी आए सब बनिया है, जाति से बनिया है, तो जहां फायदा होता है वहीं हम जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। तो हमारे विनोद भाई ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो बिल्कुल यहां हमें अपने स्वभाव के जानकारी मिलती है, फायदा मिलता है, तभी लोग आएंगे। और मैं कल से कहूं देखो साहब आपको आना है ना, तो हर एक जन जाते जाते यहाँ पांच के नोट रख के जाना, किसको बताना मत। एक दिन आओगे, दो दिन आओगे, फिर कहेंगे जाने दो, इसमें फायदा नहीं, रोज का पांच जाता है, कल से आना बंद होएगा। हाँ, और हम कहेंगे यहाँ रोज आपको सुनने को भी मिलेगा और रोजाना भोजन भी मिलेगा। अरे ये तो पांच रुपए में बटा रहे, तो यहाँ इतनी भीड़ होगी कि जगह नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हमको वीरेश भाई खानगी में पूछते ये कब से चालू होने वाला है, तो मिलिंद भाई बोलते जब से आप चालू करो, उसमें क्या फर्क पड़ना है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमें यहाँ फायदा होता है अपना स्वयं का, इसलिए तो जीव यहाँ बार बार सुनने के लिए लालायित हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फर्क ये है, वहां द्रव्य की बात बताइए, कॉमन द्रव्य है सच, और दूसरे में जीव द्रव्य की, जानना और परिणमना, जानने का कार्य कौन से द्रव्य में होगा। इसलिए उसको समय कह के समय सार नाम दिया, तो समय सार यानी ये जो सारे छह समय है द्रव्य है, उसमें से सार रूप कौन है, तो जीव द्रव्य है, तो इन जीव द्रव्य में भी अनंत जीव है, तो उसमें सारभूत कौन है, मेरे पप्पा का आत्मा। हाँ, ख्याल में आया ना, मेरा आत्मा। यहाँ तो पांच परमेश थी जो है वह भी आश्रय करने योग्य नहीं है, ख्याल में है? तो इसलिए आश्रय करने योग्य ऐसा मैं स्वयं हूं। चलो अच्छा हो गया आपने पूछ लिया, एक ही साथ जानमू आ गया ना, अने नीचे से थर्ड लाइन, एक ही बीजो अर्थ लख्यो ना, एक ही साथ जानमू अने परिणमन करवू, और ऊपर क्या है थर्ड लाइन ऊपर से, दरेक पदार्थ पोताना गुण पर्याय प्राप्त थईने परिणमे छे तेने समय कहेवामां आवे छे। नीचे में शू थाय छे के एक ही साथ जाणवू अने परिणमन करवू एवी बे क्रियाओ जेमां होय तेने समय कहे छे। आ रीते बधा आत्माओ समय छे, आ बीजी गाथामां जे शुद्ध आत्मा ने जाणे अने ए रूपे परिणमे तेने स्व समय जाणवो एम विशेषपणे कहे छे। इसमें मूल बात क्या है कि शुद्ध आत्मा को जानेगा और उस रूप परिणमेगा, उस रूप परिणमेगा यानी क्या कि मैं ज्ञाता ही हूं ऐसा जाना, तो उस रूप परिणमना यानी क्या, तो उस रूप श्रद्धा भी की और उस रूप स्वरूप में एकाग्र भी हुआ, यानी जिसको सम्यक दर्शन हुआ, जिसने रत्नत्रय धारण किया, ते जीव स्व समय छे ते तेने स्व समय जाणवो, यानी वही जीव स्व समय है। अभी जो आपका पॉइंट ये है पिनाक भाई कि वह तो निरंतर, तो निरंतर स्वरूप में उपयोग रूप से नहीं रहता है, तब क्या होगा, उसके वहां जो शुद्धता जो प्राप्त हुई है उतनी शुद्धता तो निरंतर चालू ही रहेगी जब तक वो दोबारा मिथ्यात्व नहीं होता है। तो उसकी शुद्ध परिणति चालू है, और फिर उपयोग शुभ में लगा हो अशुभ में लगा हो बात अलग है, शुद्ध में फिर वापस जब भी लगेगा लगेगा, उस समय अशुभ उपयोग में या अशुद्ध अशुद्ध उपयोग में नहीं लगेगा, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग में, फिर शुद्ध उपयोग में से बाहर आवे फिर शुभ में लगे, शुभ उपयोग चालू हो जाए अशुभ उपयोग चालू हो जाए, लेकिन शुद्ध परिणति चालू है तो वह स्व समय ही है। नहीं तो हमको सिर्फ केवली को ही स्व समय बोलना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर उपयोग स्वरूप जान रहे हैं निरंतर, तो बाकी लोग रह जाएंगे। अब गाथार्थ उपरणु प्रवचन, छेलो शब्द जान छे ने, आचार्य कहे छे के जान आज्ञावाचक शब्द छे, एटले आचार्य भगवान आज्ञा करे छे के हे भव्य। अभी किसी को ऐसा मन में प्रश्न भी उठेगा कि आचार्य को भगवान क्यों कहा, हमने तो सुना है पांच परमेष्ठी में तो अरिहंत और सिद्ध भगवान है और बाकी तीन जो है आचार्य उपाध्याय और साधु वे कौन है, साधु है मुनि है, ख्याल में है? तो यहाँ आचार्यों को भगवान क्यों कहा, इसलिए कहा कि वो निश्चित रूप से आगे चलकर भगवान होने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बहुत बड़ा करोड़ अभी तो अब्जो के ऊपर क्या होता है भाई, खबजोपति कोई जो भी होता है, उसका लड़का जो होगा समझो अभी कितना है 2 साल का है बच्चा, तो उसके घर में नौकर उसको क्या बोलेगा, हो सेठ, उसको सेठ, अरे अभी उसको तो पैसे की गिनती भी नहीं आती है उसको सेठ, वो भावी नहीं गमने से, ये अभी हम कहते हैं ना कि श्रेणिक राजा अगला तीर्थंकर जो होने वाला है वो हमारा तीर्थंकर है, अभी तो वहां 84,000 में से कितने हजार बाकी है उसके नरक में पड़ा हुआ है, फिर भी कहेंगे कि वो तीर्थंकर है, ख्याल में? तो इसलिए कहते हैं आचार्यों को भगवान कहने की पद्धति जो है उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई उसमें खोटापन नहीं है। जैसा कहते कि अभी हमको तुमको भी यहाँ हे आत्मा क्या भगवान आत्मा ऐसा कहेंगे, तो वो भगवान आत्मा इस अपेक्षा कह रहे हैं कि स्वभाव अपेक्षा तू भगवान है, ये तेरे को ख्याल में रहे हमेशा, जहां जो अपेक्षा हो वो ध्यान रखे। अब क्या कह रहे देखो, इटले आचार्य भगवान आज्ञा करे छे के हे भव्य, जे जीव दर्शन ज्ञान चारित्रमा स्थित छे। अभी स्वामी जी ने और आगे बात बढ़ाई स्व समय की, क्या कह रहे, जे जीव दर्शन ज्ञान चारित्रमा स्थित छे तेने निश्चय थी स्व समय जान। अभी और क्लैरिटी हो गई ना, आशा तो जो खरेखर तो दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो चरित्र हुआ, ठीक है जाने दो, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पर्यायो आत्मा मा स्थिर एकाग्र थाई छे एने ठेकाने आई, तो दर्शन ज्ञान चारित्र मा जे आत्मा स्थित छे तेने स्व समय जान एम कहू छे। देखो ये बात ख्याल में आ गई, क्या कहना चाहते हैं, हमेशा क्या कहेंगे कि आत्मा में स्थित हो जा, और यहाँ स्व समय किसको कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, यानी यहाँ पर्याय की तरफ से बात की, त्रिकाली स्वभाव में स्थित है उसको उल्टी बात बता रहे। देखो देखो देखो, खरेखर तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पर्यायो आत्मा में स्थिर ने एकाग्र थाय छे एने ठेकाने आई, तो दर्शन ज्ञान चारित्र में जे स्थित छे तेने जे आत्मा स्थित छे तेने स्व समय जाने एम कहू छे, यानी ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वह तो आत्मा का स्वभाव है, उसमें जो स्थित है उसकी बात की, एटले के आत्मा अनादि थी जे रागमा ने निमित्तमा स्थित हतो, तेज आत्मा अंदर द्रव्यना लक्षे एना जेवी जे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पर्याय प्रकट थई एमा स्थित थयो तेने स्व समय जान एम कहू। रागमा
ज्ञान दर्शन चारित्र
તેને સ્વસમય જાણ એમ કહ્યું. નીચે સી થર્ડ લાઈન, રાગમાં નહીં પણ ધ્યેયના લક્ષ્ય. ધ્યેય કોણ હૈ યહાં પર રાજેશ, યાદ હૈ આપકો ધ્યેય કોણ હૈ? હા, ત્રિકાલી અપના શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્રુવ આત્મા, બરાબર, સ્વ આત્મા. પણ ધ્યેયના લક્ષ્ય જ્ઞાન શ્રદ્ધા ચારિત્ર પ્રકટ થયા એમાં રહે તે સ્વ સમય છે. અભી દેખો ઈશ્વર સે હમ તો એક નિશ્ચિત કર સકતે હૈ કે હમે અગર સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરના હૈ તો હમે કિસકે તરફ દેખના પડેગા? રોજ જાકે પાંચ પરમેષ્ઠી કો પૂજા અર્ચા કરના પડેગા કે નહીં? નહીં, શિખરજી જાના પડે, ગિરનાર, શત્રુંજય, યા કિસી કો લાખો રૂપિયે કા દાન, યા ઇતની પુસ્તક છપાવે ગુજરાતી મેં, હિન્દી મેં, મરાઠી મેં, ગુજરાતી મેં. આત્મા કો પહેચાનના હૈ, આત્મા કો અગર પ્રાપ્ત કરના હૈ તો કહેતે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરના હૈ તો તુઝે આત્મા તરફ હી દેખના પડેગા, અપને ધ્યેય મેં હી એકાગ્ર હોના પડેગા. તો ક્યા કહે રહે દેખો, ધ્યેયના લક્ષ્ય જ્ઞાન શ્રદ્ધા ચારિત્ર પ્રકટ થયા, યહી બતાતે હૈ કે હમ સ્વરૂપ મેં એકાગ્ર હોંગે, સ્વરૂપ મેં સ્થિરતા કરેંગે તો હી શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રકટ હોને વાલા હૈ. અબ વો તેમાં રહે તે સ્વ સમય છે. છ ડાળામાં આવે છે ને કે પરદ્રવ્યન તય ભિન્ન આપ મે રુચિ સમ્યક ભલા હૈ. ક્યા કહેતે હૈ? પરદ્રવ્યન તય, યાને પરદ્રવ્યોન સે ભિન્ન એસા કોણ? આપ મે યાને નિજ મે સ્વ મે ક્યા હૈ? રુચિ. અભી આપ પહેલે ક્લાસ મે બાત નિકલી થી ના, યે જીવ કો અનાદિ કાલ સે અપની રુચિ હી પ્રકટ નહીં હુઈ હૈ. ઉસકો અન્ય સ્વ છોડકર અન્ય પર પદાર્થો મે કહી ના કહી રુચિ ઇતની પડી હૈ. ક્યું? દેખો જહાં આત્મા કી બાત બતા રહે હૈ ઓર હમકો કહી ઓર ઉસસે ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ લગે તો હમ વહાં જાયેંગે પહેલે ઓર ફુરસત મે યહાં આયેંગે. યે ક્યા ઇન્ડિકેટ કરતા હૈ? કે હમે આત્મા કી રુચિ નહીં હૈ. ક્યા કહા? પરદ્રવ્યન તે ભિન્ન એસા જો આપ હૈ ઉસમે જો રુચિ હૈ ઓ રુચિ કો સમ્યક તો કહા હૈ ઓર યહી ભલા હૈ યાને વહી યોગ્ય હૈ. તો ક્યા કહા? પરદ્રવ્યન તે ભિન્ન આપ મે રુચિ સમ્યક તો ભલા હૈ. આત્મરુચિ કહી છે ને, એ રૂચિમાં આત્મા જણાયો એટલે આત્મા રૂચિ અને જ્ઞાનમાં સ્થિત થયો એવી શૈલીથી વાત છે. જીવ એટલે ભગવાન આત્મા, યા ભગવાન વિશેષણ લગાય ને. જીવ એટલે ભગવાન આત્મા જે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં સ્થિત થઈ રહ્યો છે એને સ્વસમય કહેવામાં આવે છે. આચાર્ય ભગવાન પોતે મુનિ છે ને એટલે ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન સ્થિત એવા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. ત્રિકાળી જે છે તે સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્રની પર્યાયમાં ખ્યાલમાં આવ્યો એટલે એમાં એ સ્થિત છે એમ કહી એવા જીવને સ્વસમય કહ્યો. એનો અર્થ કે જે અનાદિથી રાગમાં સ્થિત હતો તે આત્મામાં સ્થિત થયો. અહો સમયસારની એક એક કડી તેના ભાવ સહિત યથાર્થ સમજે તો કલ્યાણ થાય એવું છે. જીવ શબ્દ કેમ વાપર્યો? કેટલાક કહે છે કે આત્મા તો તદ્દન શુદ્ધ છે અને જીવ અશુદ્ધ છે. એ અન્ય લોકો કી માન્યતા હૈ. ક્યા કહા? કે આત્મા તો તદ્દન શુદ્ધ હૈ ઉસકી બાત, ઓર જીવ કહે તો વો અશુદ્ધ હૈ કહે રહે. પણ એમ નથી, એવું સિદ્ધ કરવા જીવ શબ્દ વાપર્યો છે. જીવ કહો કે આત્મા બંને એક જ ચીજ છે. અભી યહાં જબ જબ હમ શાસ્ત્ર મેં પઢેંગે તબ જીવ જબ લિખેંગે તો આત્મા કો હી રિફર કર રહે હૈ, લેકિન જબ આત્મા કહેંગે તો વો અપને લિયે બાત કર રહે હૈ. જૈસા મેને પરસો બતાયા થા ના કે ઇંગ્લિશ મેં, હા સબ યાદ હૈ આપકો, આય હમેશા કેપિટલ લિખતે હૈ, વૈસે આત્મા કહેને સે વો અપની બાત હો રહી હૈ એસા. भगवान आत्मा कहा तो क्या है, किसके भगवान की बात कर रहे हैं, अपने निज स्वभाव की बात कर रहे हैं। आई बीजी गाथा में जीवो चरित्र दंसन नाण ठीधो त्या उपाड़ियों छे, अने छेले त्या सुड़तालीस शक्तियों वर्णन छे, त्या जीवत्व शक्ति थी शुरुआत करी छे आत्मा में। अभी ये यहां जो जीवो लिखा है ना, तो उससे चरित्र यानी चारित्र दंसन यानी दर्शन और ज्ञान इसमें जो स्थित है ऐसा वहां से बात की। तो वो आगे चलकर हम जब पढ़ेंगे उसमें 47 शक्तियों में पहली शक्ति जीवत्व नाम की शक्ति है, वहां की वो बात बताएंगे। आत्मा में एक जीवत्व शक्ति छे जेने लईने आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद ने सत्ता एवा भाव प्राण ने धारण करे छे एना थी टके छे। यहां पर ये समझा रही है जीव जो अनादि काल से टिका है तो खाना खाता है इसलिए टिका होगा कि नहीं, हाँ नहीं, तो हवा पानी ऑक्सीजन अनाज घर दार, तो कहते नहीं, ये जीव जो अनादि से जो टिका हुआ है तो कहते आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद ने सत्ता एवा भाव प्राण ने धारण करे छे, और इसके लिए उसकी सत्ता अभी तक है। जीव केता जीवतु द्रव्य जीवत्व स्वभाव थी जीवे छे, यानी जीव का अर्थ है जो जीता था जी रहा है और जिएगा उसी को जीव कहेंगे। जीव कभी मरता ही नहीं है, इनका प्रश्न ऐसा है जीव मरेगा कब। अरे जीव मरेगा तो उसका नाम जीव रखेंगे ही नहीं, लेकिन हम अज्ञानी हाय हाय मैं मर गया, और कोई मरे तो रो रो के वह भी मर जावे। भाई रोना किसके लिए कि जो कभी मरता नहीं लेकिन मर गया, तो रो तो मैं समझ गया, नहीं ध्यान में नहीं आया। अरे तू स्वयं तू स्वयं भी मरने वाला है ना प्रभु एक ना एक दिन, तो फिर मरने के लिए रोता क्यों है, पहले ये तो नक्की कर कि क्या तेरा मरण है क्या नहीं। यहां तो कह रहे कि जो जीता है जो जिया था और जो जिएगा उसी को हम जीव कहेंगे, तो वो अगर बात हमारे दिमाग में या हमारे हृदय में हमारे श्रद्धा में रहेगी, हाँ ठीक है जितना मोह है उतने प्रमाण में थोड़ा बहुत रोना आवे तो समझे, लेकिन एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल रोता रहे ये क्या बात है, ये तो पागलपन है, यानी मिथ्यात्व का भरचक स्टॉक है। स्टॉकिस्ट एंड रजिस्ट बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं ये धंधे वाले जानते हैं, हमारे पास आटला करोड़ नो स्टॉक छे, अरे यहाँ तो अनंत मिथ्यात्व नो स्टॉक छे भाई, तुम्हारा क्या हजार रुपया नो स्टॉक ने करोड़ों नो स्टॉक कहीं नहीं। चलो क्या कह रहे, देखो ये मरण की बात आई ना, वास्तव में पर्याय की अपेक्षा से उस पर्याय से जीव निकल जावे तो उसको मरण कहेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु पहले तो नक्की करो कि जीव कैसा है। तो कहते हैं कि भाई वो तो जैसा उसका द्रव्य स्वभाव है वह तो त्रिकाल है, और त्रिकाल उसमें भाव प्राण तो है ही है, और भाव प्राण कभी उससे जुदे नहीं होंगे। ये जीवत्व शक्ति आएगी जब उसकी बात विशेष रूप से अपने ध्यान में आएगी। अब यहां हम आ गए, कहां तक आए थे, अच्छा हम आई बीजी गाथा लेसु, हाँ क्योंकि बीच में कहीं चालू करें। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकणमो सदा।